हरे कृष्णा। तो जिस वक्त यहाँ पर श्री गोविंद देव का अभिषेक किया गया इंद्र द्वारा, तो बहुत मूल्यवान और कीमती वस्तुएं अलग अलग लोकों से लाई गई, स्वर्ग लोकों से, छत्र, सिंहासन, शंख, अलग अलग प्रकार का जल, अलग अलग प्रकार के साधन, और वो सब अभिषेक करके भगवान को संतुष्ट करके उनको श्री गोविंद के रूप में घोषित करके सब चले गए। लेकिन उनका सिंहासन, उनका छत्र, उनकी वस्तुएं सब छोड़ के गए, और इसके पीछे जो गुलाबी रंग का जो घुमट है उसके मंदिर पीछे है, राधा गोविंद जी का मंदिर है ना, कुंड के पीछे है ना मंदिर, राधा गोविंद जी का मंदिर है। तो जब ये अभिषेक हो रहा था तो कुछ कुछ ग्वाल बाल छुप छुप के देख रहे थे, वो देख रहे थे कि एक व्यक्ति है, उसके सारे शरीर में आंखें हैं, एक व्यक्ति है वो हवा दे रहा है, एक व्यक्ति बहुत तेज पुंज है, सूर्य देव, अग्निदेव बहुत तेज तेज के पास तेज से है, इस प्रकार के अलग अलग देवताओं का अलग दर्शन करते हों, कोई पंचमुखी है, कोई चतुर्मुखी है, और अचंबा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सब लोग। फिर सब जो खत्म होता है अभिषेक, तो जाके घर को नंद बाबा को बोलते हैं, ऐसा ऐसा हमने देखा, अपने अपने बाबाओं को बोलते हैं, तो उनको लगता है कि ये बच्चे हैं, ऐसे ही कुछ बकबक कर रहे हैं, तो बच्चे उनको खींच के लेके आते हैं, दिखाते हैं सब कुछ, देखो ये सब सिंहासन पड़ा है यहाँ पर, ये जल पड़ा है, ये घट पड़ा है, हम सब सामान पड़ा है, छत्र पड़ा है, चामर पड़े हैं। तो ये सब देखकर ब्रजवासियों को भी इच्छा होती है, ग्वाल बालों को, कि हम भी हमारे कन्हैया जी का अभिषेक करेंगे। तो फिर उनका ऐसा कोई सिंहासन नहीं है रत्नों का, कोई छत्र नहीं है, कोई कीमती वस्तु नहीं है उनके पास। तो फिर वो गिरिराज जी के बीच में अनेक शिलाएं ऐसी होती है जो आसन के समान होती है, उसमें उनको बिठा लेते हैं, अपने घर का पानी दूध लेके आते हैं, बड़े प्रेम से, बड़ी सादगी में अभिषेक करते हैं। भगवान स्वयं बताते हैं बृहद भागवतामृत में कि वो जो अभिषेक ग्वाल वालों ने किया, उससे भगवान को करोड़ों गुना अधिक आनंद हुआ जितना उनको आनंद देवताओं के अभिषेक से हुआ था। क्योंकि भगवान ऐश्वर्य के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। क्योंकि ऐश्वर्य, जब मैंने कई बार बताया आपको कि ऐश्वर्य सब उनका ही दिया हुआ है, जो भी देवताओं के पास है ऐश्वर्य सभी भगवान का दिया हुआ है। तो देवताओं ने भी अभिषेक किया बड़े प्रेम से, अपना सब कुछ, जितना भी बेस्ट अपने पास में है वो सब कुछ उन्होंने नछावर किया भगवान के लिए, संतुष्ट किया भगवान। फिर भी ग्वाल बालों का जो प्रेम है भगवान से, उनके साथ देवता लोग तुलना नहीं कर सकते अपनी, उनका प्रेम तो निरपेक्ष है, केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। देवताओं की भक्ति मिश्र भक्ति है, काम मिश्र भक्ति है, कैसे उनको ऐश्वर्य भी चाहिए, भोग भी चाहिए, देवताओं का, अप्सराओं का भोग भी चाहिए, नंदनवन का भी भोग चाहिए, अच्छे अच्छे सोमरस का भोग चाहिए, उनको अधिकार चाहिए, भगवान के भक्त भी है वो। लेकिन शुद्ध भक्ति जो है ग्वाल बाल करते हैं, ग्वाल बाल लोग बिना किसी अपेक्षा से केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को उनके अभिषेक में सबसे ज़्यादा आनंद आया। हमें भी यही देखना है, अगर हमारे पास कोई ऐश्वर्य है तो हमको भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए, नहीं तो जो ऐश्वर्य भगवान को अर्पण नहीं किया जाता है वो ऐश्वर्य माया बनकर अपने लिए जाल बन जाता है, जन्म मृत्यु का जाल बन जाता है। इसलिए शरीर को पालने पोसने के साथ में बच्चा हुआ जो धन है वो सब भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा में करना चाहिए, तब जाकर हम उस धन के बंधन में नहीं बन जाते हैं। क्योंकि कली को परीक्षित महाराज ने बताया था कि अगर आपको मेरे राज्य में कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जिसमें मांसाहार हो, व्यभिचार हो, नशा हो और जुआ खेला जाता हो, तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा धन का संचय किया गया हो, वहाँ पर कली का निवास है। और जो ज़रूरत से अधिक संचय किया हुआ धन है उसमें कली का निवास है का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कलह यानी कि झगड़ा होता है उससे, और दूसरा होता है दंभ यानी कि हिपोक्रेसी, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, जो सत्य नहीं है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि सत्य है। तो दंभ और कलह जो है उसका प्रादुर्भाव होता है वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत से अधिक धन जो है भगवान की सेवा में नहीं रख के अपनी ही भोग के लिए रखा जाता है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णवों के लिए अपन चाहे गृहस्थ भी हों, हमारे पास धन दौलत भी हो, उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और अगर नहीं भी हो तो दुख करने की कोई बात नहीं है। हाँ सब लोग मेरे ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बैलगाड़ी को मत देखो देख लेना पूरा परिक्रमा में उनको, और क्या देखना है, पूरी परिक्रमा आपका साथ दिया उन्होंने, बस अभी हो गया। तो बहुत लोग गरीब होने पर बहुत चिंता करते हैं, कैसे होगा, पर्याप्त नहीं होता है, कैसे भगवान ने हमको रखा है, कैसे भक्ति करें हम, कुछ साधन नहीं है हमारे पास। रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्ति जो है किसी भी भौतिक साधन पर निर्भर नहीं रहती, भक्ति जो है वो हमेशा हृदय की भावना पर निर्भर रहती है। साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे, बिल्कुल निर्धन थे, फकीर थे एकदम, लेकिन मन में रोज भगवान की पूजा किया करते थे। हाँ उनके पास कुछ नहीं था लेकिन मन में रोज भगवान को 56 भोग लगाया करते थे, गरम गरम सोने की थाली में, भगवान स्वीकार करते हैं उसको। कोई जरूरत नहीं कि आपका हर चीज सबका साथ में हो, है तो अच्छा है, कर्म के अनुसार अगर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन ना मिलने पर आपकी भक्ति में रुकावट आने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान आपकी भावना को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मन से भक्त कंजूस नहीं होना चाहिए, धन से हो सकता है लेकिन मन से और चेतना से अपने को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम देने में बहुत कंजूस है लेकिन हम लेने में भी कंजूस हैं। जब भगवान लुटा रहे हैं, हाँ अपना धाम नाम का धन लुटा, नाम संकीर्तन लुटा रहे हैं, अपना धाम अपने को दे रहे हैं, फिर भी उसको लेने में हम कंजूसी करते हैं, उसको स्वीकारने में कंजूसी करते हैं, उसको जीवन में उतारने में कंजूसी करते हैं। आध्यात्मिक धन की कोई कमी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है। हाँ इस दुनिया का धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रगड़ना पड़ता है ना, अमीरों को भी और गरीबों को भी, दोनों को। लेकिन आध्यात्मिक धन जो है भगवान लुटा रहे हैं बिना किसी कीमत से। क्योंकि भगवान का नाम का आपने कोई चार्ज लिया है किससे? 500 रुपया लो हरे कृष्ण महामंत्र लो, 700 रुपये लो पंचतत्व का मंत्र ले लो, 1000 रुपये लो हरे कृष्ण करुणा सिंधु ले लो, 1,00,000 रुपये लो और तप्त कांचन गौरांगे जी लो, ऐसा नहीं होता है। सब फ्री में अवेलेबल है, शास्त्र सब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, सब हमारा ग्रंथ जो खाली छपाई की कीमत होती है, उसके अंदर जो सब्सटेंस है सही उसकी कीमत होती है, तो फ्री में मिलता है हमको। भक्तों का संग मिल रहा है फ्री में, कोई चार्ज नहीं भक्तों के संग के लिए। हाँ चार्ज खाली प्रसाद का और ट्रांसपोर्ट का और एकोमोडेशन का है, कथा सब फ्री में कथा का कोई चार्ज नहीं है, गोवर्धन भी फ्री में मिला आपको, कोई यहाँ पर चलने के लिए टैक्स नहीं भरा आपने, है ना, गोवर्धन मिला, घूमो आप आराम से, परिक्रमा करो, रज भी है, सब हवा है, ठंडी हवा चल रही है बढ़िया से, सूरज की रोशनी है, सब तरह से बढ़िया है। हाँ तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रजवासियों से हमको क्या सीखना चाहिए, ब्रजवासियों से हमको सादगी सीखनी चाहिए, जो ग्वाल वालों की सादगी थी हृदय की, निरपेक्ष भावना, कोई अपेक्षा नहीं, भगवान से कुछ मिलेगा इसकी भी अपेक्षा नहीं, पूर्णता भगवान से निर्भर, पूर्णता भगवान पर समर्पित, उनकी सुरक्षा ही भगवान है, उनका सब कुछ भगवान, उनसे एक एक वस्तु की भी अपेक्षा नहीं करते कि हमको ये करने से हमको ये मिलेगा, कुछ भी नहीं, पूर्ण भाव भगवान के संतुष्टि के लिए है। यहाँ के लता पता पेड़ भी इस भाव में है, ये आप देख रहे हैं कितने आप बहुत सुंदर वातावरण में बैठे हैं आप। हाँ देखो कदम का वृक्ष है, ये भी कदम, ये बरगद का वृक्ष है, आगे कदम है, उसके आगे पीपल का वृक्ष है, कभी देखे आपने वृक्ष ऐसे बम्बई में, कभी देखा है ऐसा दर्शन किया है, इतना भव्य वृक्ष कभी देखा है, जो सूखे हुए ऐसे मिलते हैं वृक्ष देखने के लिए। हाँ पुराने बरगद के पेड़ मिलते हुए ऐसे सूखे हुए परेशान त्रस्त रूप में रहते हो, यहाँ के देखिए तोता बोल रहे हैं, कोयल बोल रही है, मोर बोल रहे हैं, हाँ सब बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ पर, यहाँ की ध्वनि भी अपने कानों के लिए बहुत हितकारक है, यहाँ की हवा भी हमारे लिए बहुत हितकारक है। और ये पेड़ साधारण पेड़ नहीं है, कुछ पेड़ यहाँ के महात्मा जन पेड़ के रूप में भजन कर रहे हैं, आपको मैंने बताया ना राधा श्याम कुंड पे युधिष्ठिर महाराज और पांडव वहाँ पर भजन कर रहे हैं पेड़ के रूप में, कुछ गोपियाँ पेड़ के रूप में यहाँ पर रहती है, रात को श्रृंगार करके रास में प्रवेश करते हैं। और कितने पवित्र वृक्ष हैं यहाँ पर, देखो नीम का वृक्ष है, ये पीलू का वृक्ष है, भगवान को बहुत प्रिय है ये, नीम का वृक्ष है, पीलू का है, बरगद का है, अश्वत्थ का है, कदम का है, तमाल का है, इतने सारे पेड़ एक साथ में आपको कहीं नहीं मिलते हैं, ये पवित्र स्थानों में मिलते हैं, ब्रज में, मायापुर में, अयोध्या जी में ऐसे मिलते हैं। तो ये इनका एक शक्ति होता है, ये जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ की चेतना को स्वीकार करते हैं, वहाँ पर जो लीला चल रही है, जो वहाँ की जो भावना है उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो भी हम जैसे लोग इनके सानिध्य में आते हैं उनको भावना दे देते हैं, दे गिव दैट वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस टू ऑल ऑफ अस। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं जब भी कथा करना वृक्ष के नीचे बैठ के करना, क्योंकि वो हमको आध्यात्मिक सहायता करते हैं, सपोर्ट देते हैं, हमारी चेतना को बढ़ाते हैं। क्योंकि इन वृक्षों ने यहाँ पर नित्य लीला चलती है, हमको दिखाई नहीं देता है हमारे आँखों को, लेकिन यहाँ पर नित्य लीला चलती है ठाकुर जी की, और ये पेड़ उनको देखते रहते हैं, हमेशा निहारते रहते हैं और उस लीलाओं की चेतना को स्वीकार करते रहते हैं। इन एसेंस द कॉन्शियसनेस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ट्रीज, और ये सब चेतना जो है हमको वो उपलब्ध कराते हैं। ये कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ पर स्वयं साक्षात गिरिराज जी विराजमान है, सब पेड़ पौधे यहाँ पर राधा का नाम रटते हैं, श्री गोविंद का नाम रटते हैं, सभी वातावरण यहाँ का कृष्णमय है, कृष्ण समर्पित है, कृष्ण भावनामय है। हम लोग ऐसी भावना में भावनापूर्ण वातावरण में बैठे हैं, इसलिए ठाकुर जी का अनन्य धन्यवाद करना चाहिए हमको। आज हमने क्या सोच के आए थे कि होगी नहीं होगी, शक्ति होगी कि नहीं होगी, तो कितनी बढ़िया से आज की परिक्रमा पूरी हुई है। हाँ, सब लोग थके, शरीर थका हुआ है, लेकिन मन बहुत प्रफुल्लित है कि नहीं, समाधान है मन में कि हम सेवा कर सके भगवान की। लेकिन वो सेवा करने का बल भी उनकी तरफ से प्राप्त होता है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, इसलिए हमको भक्त को केवल ऋणी रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऋणी रहना चाहिए, थैंक यू वेरी मच इसी भाव में रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, हवा के लिए, निवास के लिए, जल के लिए, प्रसाद के लिए, रहने की व्यवस्था, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो भक्त ऐसे धन्यवाद की भावना में होता है वही भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकता है। जो ऋणी होता है सोचता नहीं कि अरे सब कुछ था लेकिन यार पकौड़ा नहीं था सब कुछ था लेकिन हमको केवल एक ही पकौड़ा मिला जो मिला उसमें धन्यवाद करना चाहिए। हम तो सोचे थे कि एक सब्जी मिलेगी, तीन सब्जी भी, दो स्वीट, हाँ ऊपर से पकौड़ा भी ऐसा धन्यवाद करके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी जब हम उनके धाम में आते हैं तो अपनी मर्जी से हमको रखते हैं, हम कुछ सोचते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनकी मर्जी से हमको घुमाते हैं, उनकी मर्जी से दर्शन कराते हैं, उनकी मर्जी से हमको खिलाते पिलाते हैं। हम उनके घर में आए ना, थोड़ा डिमांड करेंगे हमको ये बिस्तर चाहिए, हमको पकौड़ा चाहिए और रसगुल्ला नहीं दिया आपने, ऐसा नहीं बोलते मेहमान के घर में जाने के बाद, है ना। जो भी खिलाते हैं खाते आराम से, यहाँ सो तो सो जाते हैं, उस कमरे में सो कर सो जाते हैं। तो हम ठाकुर जी के घर में आए, ठाकुर जी हमको रख रहे हैं बड़े प्रेम से, यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं अपने बड़े प्रेम से, और आपको अपने धाम में अपने घर में अधिक से अधिक हमारी योग्यता से भी अधिक आनंद देने का वो प्रयास कर रहे हैं, है ना, हमारी अपेक्षा से भी अधिक आनंद दे रहे हैं आपको। तो आज के हमारे इस आई कैंप के इतिहास में सबसे पहले आई कैंप की सेवा करने के बाद में गोवर्धन की परिक्रमा संपन्न हुई है, इससे बड़ा समाधान है इसका। ब्रजवासी कल आए थे, बोल रहे थे क्यों प्रभु जी इनसे आप चल के परिक्रमा कराते हो, अरे ये सब थके हुए हैं सेवा करके, इतना चल पाएंगे क्या, ये धूप होती है। बोले प्रभु जी ऐसा मत बोलो, मेरा सब प्रवचन बेकार जाएगा, एक घंटे पहले प्रवचन किया मैंने, सबको हवा भरी हुई है, आप तो उसको सुई लगा रहे हो, पूरी हवा निकाल दे रहे हो। सब होता है, केवल इच्छा होनी चाहिए बस, कोई थकान वकान नहीं होती है। कल से फिर 5 मिनट चलना है अपने को, फिर घूमने जाएंगे दर्शन करने के लिए, सोचना नहीं कि शरीर थक गया है, सब मन में होता है, अरे बहुत थक गए, अभी पैर दुखेगा रात को, कैसे करेंगे, बहुत सोना पड़ेगा, ये सब मन में होता है, सब मन का खेल है ये, सोचो ही मत उसके बारे में, पैर दुख रहा है और कुछ हो रहा है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। जैसे हम लोग को बताते हैं कुछ लोग कि अब जब जाते हैं ना विदेश को, तो सोचना ही नहीं कि हमको जेट लैग होगा, 2 दिन उसमें जाएंगे, फिर कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे, पता नहीं कब एडजस्ट हो जाएंगे, सोचना ही नहीं है, अपना काम करते रहना है बस। उसी तरह से जितना शरीर का सोचोगे उतने ढीले पड़ जाओगे, जितना शरीर का सोचना छोड़ दोगे उतना उत्साहित रहोगे, एकदम मूड में रहोगे। इसलिए कल शाम तक एकदम मूड में रहना है आपको, फिर ट्रेन में क्या सो जाओ आराम से, ट्रेन में कोई दर्शन नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, कोई परिक्रमा नहीं है, केवल समय निकालना है बस भगवान के भजन में। हाँ, तो आप सबको मैं बड़े हृदय से बधाई देता हूँ कि आप सब लोग, हो सकता है बहुत लोगों ने पहली बार गोवर्धन की परिक्रमा की हो, है ना, कितने लोगों ने पहली बार की हाथ बताओ, अरे तो बहुत सारे तो पहले वाले ही हैं, कुछ कुछ लोग पुराने हैं। हाँ देखो कितने भाग्य की बात है, हाँ 2010 साल में भगवान ने आप पर इतनी कृपा करी है, गोवर्धन की परिक्रमा कराई है। हाँ, कहाँ से आप आए हो, कहाँ से, किस घर से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो परिक्रमा करता है उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त होता है और भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जिस रूप में आप भगवान को देखते हो उस रूप में भगवान का प्रेम आपको प्राप्त होगा, और क्या चाहिए जिंदगी में हमको, काले हैं, गोरे हैं, किस जाति के, हु केयर्स, भगवान के प्रेम होना चाहिए। किसी भी धर्म या जाति से हो, किसी भी देश से हो, किसी भाषा बोलते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान ये सब भारी चीज को देखते नहीं है, हृदय की भावना को देखते हैं। हमारे हृदय में क्या भावना है उसको देखते रहते हैं वो, और आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम है तो अपने आप सब पर प्रेम करने लगेंगे। आपके साथ में जो काला गोरा कोई बैठा है सबसे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो उनके अंश हैं, और यही भगवान की भक्ति भावना है। किसी भी धर्म के अनुसार उसी को हमको अपनाना है, सार को अपनाना है, बाहरी रूप को अपनाना नहीं है, सार एसेंस ऑफ डिवोशन वी हैव टू एक्सेप्ट, फिर अपना जीवन सफल हो जाएगा। फिर हर जीव पर हम प्रेम करेंगे, हर सांस पर प्रेम करेंगे, जीवन पर प्रेम करेंगे, और जीवन के अंत में भगवान के धाम में जाकर उनसे भी प्रेम करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम श्री गिरि गोवर्धन की जय। गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम।
जो मैंने कल आपको वर्णन किया था गिरि गोवर्धन का, आपके सामने विराजमान यही गोवर्धन जब भगवान के चरण पड़ते हैं इसके ऊपर, तो मुलायम मक्खन की तरह बन जाते हैं, भगवान को सहारा देते हैं, भगवान को बैठने का जगह देते हैं, झरना अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, हमारे दृष्टि से ओझल है सब कुछ, लेकिन सब चीज़ से संपृक्त है, झरना, जलाशय, वृक्ष, पेड़, जड़ी बूटियाँ, फल फूल, घास गाय के लिए, छाया, गुफाएं, रत्न वाणिक सबसे भरा हुआ है, परिपूर्ण है ये, हर तरह से भगवान की लीलाओं को सहायता करने में संपन्न है। ऐसे गिरि गोवर्धन का हमको संग मिला है, इस गिरि गोवर्धन से जाने के पहले सब लोग भगवान के चरणों में भक्ति की मांग करना, क्योंकि गिरि गोवर्धन भगवान की परम भक्ति, प्रेम भक्ति देने में समर्थ हैं। जो भी याचक उनके पास बड़े हृदय से प्रार्थना करता है प्रेम भक्ति का, उनको प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। सब लोग बड़े हृदय से प्रेम भक्ति की याचना करना। जय गिरि गोवर्धन की जय।